तारीख 13 अगस्त दिन गुरुवार। नमस्कार, भारत के साथ मैं फैसल मोहम्मद अली। चीन के उत्तरी शहर तियानजिन में भारी धमाके, कम से कम 17 की मौत, 400 घायल।
My whole building shake. I thought it was an earthquake. So I just kind of woke up in a panic, looked out the window and the sky was red.
हंगामी मानसून सत्र के आखिरी दिन क्या होगी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति? एक बातचीत संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी से, और चलेंगे पुरानी दिल्ली की गलियों में जहां हर इतवार बिजती है शतरंज की बिसात।
शतरंज का हमारा मतलब ये, शत माने सो, जो संस्कृत में शत है सो, और रंज माने उर्दू का जो है गम, जो सो गम देता हो वो शतरंज है।
सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। चीन के उत्तरी शहर तियानजिन में दो बड़े धमाके हुए हैं जिसमें 17 लोगों के मारे जाने की खबर है, और अभी तक खबरों के अनुसार करीब 400 लोग घायल हो चुके हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनुआ के अनुसार धमाका स्थानीय समय अनुसार रात के करीब 11:30 बजे बिनहाई न्यू डेवलपमेंट जोन के एक गोदाम में हुआ जिसमें ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे। बीबीसी की चीनी सेवा के अनुसार यह एक औद्योगिक दुर्घटना है। दक्षिण कोरिया की सरकार का कहना है कि वो उत्तर कोरिया के उप प्रधानमंत्री चो योंग गोन की हत्या पर आ रही खबरों पर नजर रखे हुए है। खबरों के अनुसार गोन की हत्या उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के आदेश पर मई में की गई थी। दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहैप की रिपोर्ट के अनुसार गोन किम जोंग उन की वनीकरण नीति से खुश नहीं थे। योनहैप के अनुसार किम जोंग उन के शासन में उत्तर कोरिया में अब तक करीब 70 अधिकारियों की हत्या की जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने मध्य अफ्रीकी गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के प्रमुख बाबकर गाय को बर्खास्त कर दिया है। मून ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और शोषण की खबरों से गुस्से में हैं। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के सैनिकों पर राजधानी बांगुई में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने और एक लड़के समेत उसके पिता की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में मौजूद फ्रांस के सैनिकों पर भी यौन शोषण के आरोप लगे हैं जिसकी जांच चल रही है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर एक संक्षिप्त प्रेस वार्ता में बान की मून ने कहा,
आई बिलीव द डिस्टर्बिंग नंबर ऑफ एलिगेशंस वी हैव सीन इन मेनी कंट्रीज।
पहले भी कई देशों में हमारी शांति सेना पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हैं, लेकिन मध्य अफ्रीकी गणराज्य में हमारे सैनिकों की तैनाती से पहले और उसके बाद आरोपों की संख्या को देखकर लगता है कि अब सख्त कार्रवाई करने का समय आ गया है। अब बहुत हो चुका। आज मैंने शांति मिशन के प्रमुख बाबकर गाय का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून। इसके साथ ही बान की मून ने यह भी साफ कर दिया कि वो भविष्य में इस तरह के किसी भी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन के सेंट्रल बैंक ने एक बार फिर से अपनी राष्ट्रीय मुद्रा युआन का मूल्य 1% घटा दिया है। इस नए फैसले से एशियाई बाजारों में एक बार फिर से हलचल मच गई है। इस गिरावट के साथ ही युआन पिछले 2 दशक में डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर आ गया है। वहीं सरकार के अनुसार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस कदम को उठाया गया है। पिछले सप्ताह के अंत में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जुलाई में चीन को निर्यात में करीब 8% का नुकसान उठाना पड़ा था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा में स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम को आप इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल पर भी लाइव सुन सकते हैं। सबसे पहले खबर चीन से, जहां उत्तरी शहर तियानजिन में कल आधी रात के वक्त एक के बाद एक हुए 2 भयंकर धमाकों से शहर थर्रा उठा। अब तक कम से कम 17 लोगों की मौत की खबर है और सरकारी टेलीविजन सीसीटीवी के मुताबिक 400 लोग घायल हैं। तियानजिन म्युनिसिपल प्रशासन का कहना, माफ कीजिएगा, कि घायलों में से 11 की स्थिति नाजुक है। सरकारी मीडिया का कहना है कि धमाका खतरनाक और रासायनिक पदार्थों वाले एक गोदाम में हुआ। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनुआ के अनुसार धमाका रात के करीब 11:30 बजे बिनहाई न्यू डेवलपमेंट जोन के एक गोदाम में हुआ। बीबीसी के चीनी सेवा के अनुसार यह एक औद्योगिक दुर्घटना है। بی بی سی نے ایک شہری سے ایک بات کی جس کا کہنا تھا کہ اسپتال میں گھائلوں کی بھیڑ جمع ہے. ایک شہری مونیکا اینڈریوز نے بی بی سی سے بتایا,
I was sleeping and got woken up by a massive explosion. I could just feel
میری نیند ایک بھینکر دھماکے سے کھلی. مجھے پوری بلڈنگ ہلتی ہوئی محسوس ہوئی. میں گھبرا کر اٹھی اور کھڑکی سے باہر دیکھا تو پورا آکاش لال رنگ کا دکھ رہا تھا. میں نے دیکھا میرے پڑوسی بھاگ رہے ہیں. میں نے کپڑے پہنے لیکن میں کسی سے بات بھی نہیں کر پائی تھی. کسی بیچ ایک دوسرا دھماکہ ہوا. ہر طرف بھگدڑ مچ گئی. لوگوں کو لگا کہ جیسے بھوکمپ آ گیا ہے. تیانجین کے ایک ناگرک کے شبد, پاس کے علاقوں میں بجلی گل ہو گئی ہے. فی الحال دھماکے کی وجہ کا پتہ نہیں چلا ہے. بیجنگ کے دکشن پور میں استھت تیانجین دیش کا اہم بندرگاہ اور پرمکھ اودیوگک شیتر ہے. اور دوسری خبر بھی چین سے. چین نے کل اپنی مدرا یوان کے مولیہ میں پھر سے کمی کرنے کا اعلان کیا ہے. پچھلے دو دنوں کے بھیتر سینٹرل بینک نے یہ لگاتار دوسری کمی کی ہے. ڈالر کے مقابلے چینی یوان اب لگ بھگ 3% سے کچھ کم سستا ہو گیا ہے. سمجھا جاتا ہے کہ یہ قدم نریات کو بڑھاوا دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے. چین کی ارتھ ویوستھا پچھلے دنوں کچھ ڈاواں ڈول رہی ہے. بی بی سی سنواداتاؤں کی رپورٹوں کا سار سنیں امل چودھری سے.
منگلوار کو یوان کی قیمتوں کو 1.9% کم کرنے کے بعد چین کے سینٹرل بینک نے کل چینی مدرا کے مولی کو 1% اور گھٹا دیا. بدھوار کے فیصلے کے بعد ایک امریکی ڈالر کے مقابلے یوان کی قیمت 6.33 پر پہنچ گئی ہے. دو دنوں میں ہوئی گراوٹ کے ساتھ یوان پچھلے دو دشک میں ڈالر کے مقابلے سب سے نچلے استر پر آ گیا ہے. چینی سرکار نے اسے نریات کو بڑھاوا دینے والا قدم بتایا ہے. چینی ارتھ ویوستھا فی الحال کمزور دور سے گزر رہی ہے. پچھلے سپتاہ کے انت میں جاری کیے گئے آنکڑوں کے انوسار جولائی میں چین کے نریات میں پہلے کے مقابلے قریب 8% کی کمی آئی ہے. وہیں جولائی میں اودیوگک اتپادن بھی پچھلے سال کے مقابلے 6% ہی بڑھا, جو کہ امید سے کم تھا. چین کے وانجیہ منترالے کے ادھیکاری جینگ یوز ہونگ نے کہا, مجھے لگتا ہے کہ ویاپار اور نویش پر ابھی اس کا بہت صاف اثر نہیں دکھے گا. میرا ماننا ہے کہ پہلے کی طرح یوان کی قیمت میں کی گئی کمی نریات کو بڑھاوا دینے میں مدد کریں گے. چینی وانجیہ منترالے کے ادھیکاری کے شبد. مانا جا رہا ہے کہ چین کے اس قدم سے ویشوک استر پر مدرا کے اومولین کا دور شروع ہو جائے گا. امریکہ نے چین کے اس قدم کی آلوچنا کی ہے. امریکی شیئر بازاروں میں اس کارن سے بھاری گراوٹ دیکھی گئی ہے. لیکن چین کے اس قدم کا چینی نریاتکوں خاص کر ٹیکسٹائل اور کار کمپنیوں کو فائدہ ہوگا. وہیں ودیشی خودرا ویاپاریوں کے لیے چینی اپبھوکتا وستویں سستی ہو جائیں گی. ساتھ ہی ودیشی سیلانیوں کو بھی کچھ حد تک اس کا فائدہ مل سکتا ہے. مگر ساتھ ہی پراپرٹی اور استھانیہ سرکاری فائنانسنگ کمپنیوں کو ودیشی مدراؤں میں رن پر ادھک بیاز کا بھکتان کرنا ہوگا. وہیں ویمانن کمپنیوں کو جنہیں تیل کے دام ڈالر میں چکانے ہوتے ہیں انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. چین میں سامان نریات کرنے والے ویاپاری خاص کر لگزری سامان بیچنے والوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا. حالانکہ انتر راشٹریہ مدرا کوش نے چین کے قدم کی سراہنا کی ہے. حالانکہ سوتنتر ارتھ شاستری جیوف لوئس کا کہنا ہے کہ اس اومولین سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑنے والا. جو بھی بدلاؤ ہوئے ہیں اسے بہت ہی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. آج ادھکتر اخباروں کا شیرشک تھا, یوان کے اومولین نے دنیا کو ہلایا. یوان اور ڈالر کا دوپکشیہ در 2% سے کم ہوا ہے. یہ بہت بڑا اومولین نہیں ہے. پرمکھ مدرائیں اس سے بھی زیادہ کے در سے روز گھٹتی بڑھتی ہیں. مشکل کیول یہ ہے کہ ہمیں یوان کے استھر رہنے کی عادت پڑ گئی ہے. ارتھ شاستری جیوف لوئس کے شب. امریکہ اور انیہ دیشوں کی سرکاروں کو شکایت رہی ہے کہ چین یوان کے مولیہ کو جان بوجھ کر کم رکھتا ہے تاکہ اسے نریات میں فائدہ ہو, لیکن اس سے ودیشی پرتیدوندی کمپنیوں کو گھاٹا اٹھانا پڑتا ہے.
یہ تھے امل چودھری بتا رہے تھے کہ چین نے دو دنوں کے بھیتر اپنی مدرا میں کی قیمت میں ڈالر کے مقابلے بھاری کمی کی ہے. چین کی مدرا یوان کے اومولین کا اثر بھارتی بازار میں بھی دیکھنے کو ملا ہے. بدھوار کو بھارتی مدرا روپیہ دو سال کے نیونتم न्यूनतम सबसे कम दर पर पहुंच गया। रुपया 58 पैसे कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले 64.77 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 3.5 पॉइंट की गिरावट हुई। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुंझुनवाला से पूछा कि क्या रुपए में गिरावट चीन की मुद्रा अवमूल्यन की वजह से है।
मेरे हिसाब से तो चीन का ही ये तात्कालिक एक रिएक्शन है, क्योंकि अगर भारत अपनी मुद्रा का अवमूल्यन चीन के समानांतर नहीं करेगा, अगर रिजर्व बैंक, तो भारत के जो निर्यात है वो विदेशों में महंगे हो जाएंगे। चीन के सस्ते हो जाएंगे, भारत के महंगे हो जाएंगे। गिरावट तब होती है जब लोग डॉलर को ज्यादा खरीदते हैं। जो व्यापारी हैं, तेल कंपनियां हैं जैसे, उनको तेल खरीदना है। जैसे ही चीन ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, उन्होंने तत्काल डॉलर्स ज्यादा खरीदे और डॉलर्स की मांग बढ़ने से डॉलर का दाम बढ़ा और तदनुसार रुपए का दाम घटा।
तो रुपए की जिस तरह से कीमत कम हुई है, तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर आप देखते हैं?
देखिए, इस परिस्थिति में मेरे ख्याल से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण क्या कि इस अवमूल्यन से नॉर्मली क्या होता है कि अवमूल्यन के बाद भारत के जो निर्यात हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और भारतीय निर्यातकों को विदेश में अपना माल बेचने में सहूलियत होती है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ऐसा प्रभाव शायद न हो, क्योंकि ये जो अवमूल्यन है, अब आप देखेंगे अगले 2-4 दिन में कि भारत और चीन के साथ और भी तमाम जो विकासशील देश हैं, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश है, वियतनाम है, ये इनको भी समानांतर अवमूल्यन करना पड़े। तो जब ये पूरे दुनिया के ही जो विकासशील देश हैं सब अपना अवमूल्यन करेंगे, तो कोई विशेष भारत को लाभ नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है।
इसी के साथ सेंसेक्स में भी गिरावट देखी गई है।
शायद शेयर बाजार के जो सटोरिए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। चीन के द्वारा अवमूल्यन करना, मतलब चीन की जो समस्या थी उसका वो हल ढूंढ रहे हैं। इन्वेस्टर्स को ऐसा समझ में आ रहा है कि पूरा विश्व एक मंदी के दौर में प्रवेश कर सकता है और इसलिए सेंसेक्स गिर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है मुझे।
ये थे भरत झुंझुनवाला, अर्थशास्त्री, और उनसे बात कर रहे थे वात्सल राय। और अब एक और खबर भारत से। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। कल यानी बुधवार को सुषमा स्वराज के ललित मोदी वाले मुद्दे पर कांग्रेस के कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बहस हुई। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर तीखे हमले भी किए। एक रिपोर्ट के साथ सुशीला सिंह।
सत्र समापन के एक दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस के कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बहस हुई, लेकिन इससे भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी कम नहीं हुई। लगातार कांग्रेस के निशाने पर रही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखे हमले किए।
गांधी को कहना चाहती हूँ, आपको बहुत शौक है छुट्टियाँ मनाने का, आप जाइए किसी दिन। इस बार की छुट्टी में कहीं एकांत में बैठकर अपने परिवार का इतिहास पढ़िए।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सुषमा को लगभग उसी अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछे।
गांधी जी के 3 बंदर हुआ करते थे, छोटे छोटे। एक बंदर भी एक बंदर कहता था बुरा मत देखो, दूसरा बंदर कहता था बुरा मत सुनो, तीसरा बंदर कहता था बुरा मत बोलो। मोदी जी ने इसको मॉडिफाई कर दिया है। मोदी जी का कहना है सच को मत देखो, सच को मत सुनो और सच को मत बोलो।
चर्चा पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के सभी आरोप खारिज कर दिए। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि लोकसभा में हुई बहस के बाद कांग्रेस की साख कमजोर हुई है। उधर कांग्रेस आज के लिए अपनी रणनीति बताने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा,
संसद की रणनीति संसदीय दल और संसदीय दल के नेता, कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तय करेंगे। कांग्रेस ने एडजर्नमेंट मोशन इसलिए दिया था कि प्रधानमंत्री स्वयं आकर जवाब देंगे, परंतु प्रधानमंत्री ना अपना मौन तोड़ा और ना संसद को ना सामना करने की अपनी जिद तोड़ी।
संसद में कुल 64 विधेयक लंबे समय से अटके हुए हैं। इनमें से कुछ यूपीए सरकार के कार्यकाल के हैं। संसद के मौजूदा मानसून सत्र में सिर्फ दिल्ली उच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2015 ही पास हो पाया है। सरकार की कोशिश होगी कि मॉनसून सत्र खत्म होने के पहले वो राज्यसभा में जीएसटी बिल पारित करा ले। राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में इस बिल का पारित होना बहुत हद तक विपक्ष के रुख पर निर्भर करेगा।
रिपोर्ट सुना रही थी बीबीसी संवाददाता सुशीला सिंह। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी से बात की और पूछा कि मानसून सत्र के आखिरी दिन बीजेपी का एजेंडा क्या होगा।
दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरा सेशन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से व्यवहार करती रही और एक विषय को लेकर जिसका उत्तर आज सुषमा स्वराज जी ने स्वयं दिया, जिनके खिलाफ उन्होंने चार्जेस लगाए थे, और अरुण जेटली ने बताया कि जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा की जा रही थी, अगर कांग्रेस पार्टी जो विषय को उन्होंने आज चर्चा किया ये 12 दिन पहले भी कर सकते थे, तो आखिर उद्देश्य क्या था। आप पूछ रहे हैं कि आने वाले दिनों में एजेंडा क्या है, एक दिन बचा है, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारा जो इस सेशन का सबसे बड़ा एजेंडा था वो जीएसटी था। तो मुझे लगता है कि सुषमा स्वराज तो एक बहाना था, मूल रूप से देश के आर्थिक विकास के गति को रोकने का कांग्रेस का ये जो तरीका था अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक है, स्पीकर तय करेंगे, राज्यसभा के उपाध्यक्ष तय करेंगे, अध्यक्ष तय करेंगे।
रूडी साहब, जिस तरह बहस हो गई इस मुद्दे पर, पहले एक कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही थी कि जब तक रिजिग्नेशन नहीं होगा तब तक डिस्कशन नहीं होगा, अब डिस्कशन हो गया, तो आपको लगता है कि आखिरी दिन
एक विषय समझना पड़ेगा देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को। लगातार वे कह रहे थे कि पहले इस्तीफा दो तो फिर बहस करेंगे, फिर अचानक जब दो दिन बचा तो उन्होंने कहा कि चलो अब बहस कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये पूरा उद्देश्य था सेशन को ना चलने देने का, तो कांग्रेस की मंशा साफ नहीं है। जिस प्रकार से राहुल जी बोले, जिस प्रकार से सोनिया जी लोगों को भड़काती रही, ऐसा स्थिति रहा तो उनको आने वाले दिनों में उनकी उपस्थिति नगण्य हो जाएगी।
क्या संसद के मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने की भी कोई योजना है?
देखिए, ये तय होगा कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के तहत से, लेकिन जीएसटी एक ऐसा बिल था जिसको हम सब पारित कराना चाहते थे, और राज्यसभा में यदि पारित हो जाए तो मैं समझता हूँ देश के और गरीबों के लिए और देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा योगदान होगा।
अखबारों पर एक नजर डालते हैं, अमर चौधरी हैं अखबारों के साथ स्टूडियो में। अमल, अखबार में भी क्या मानसून सत्र के बारे में ही बात है?
जी, आज के जितने भी प्रमुख अखबार हैं उनमें सभी में संसद का जो मानसून सत्र में जो हंगामा हुआ उसी को प्रमुखता से सभी ने प्रकाशित किया है। इसमें अंग्रेजी अखबारों की बात करें तो द इंडियन एक्सप्रेस का शीर्षक है सुषमा और राहुल की टक्कर से हुआ कड़वा अंत। वहीं द हिंदू लिखता है लोकसभा में ललित गेट पर चर्चा से उठी चिंगारियां। हिन्दुस्तान टाइम्स ने इसको शीर्षक दिया है सुषमा के बचाव से राहुल आए कॉम्बैट मोड में। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है भाजपा ने अपने बचाव को हमले में बदला, सदन में आखिरकार हुई ललित गेट पर चर्चा। वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदी अखबारों का रुख करें तो नई दुनिया ने सुषमा स्वराज के बयान को शीर्षक बनाया है। अखबार ने इसको शीर्षक दिया है कि राहुल मम्मा से पूछें डैडी ने एंडरसन को क्यों छोड़ा और क्वात्रोच्ची से कितने पैसे लिए थे। वहीं हिंदुस्तान हिंदी का शीर्षक है संसद में आरोपों की बमबारी, और नवभारत टाइम्स ने लिखा है मैदान जंग बनी लोकसभा। वहीं दूसरी तरफ अमर उजाला का शीर्षक है मम्मा से पूछो कितने पैसे लिए क्वात्रोच्ची से।
मम्मा से पूछो बड़ा ट्रेंड भी कर रहा
जी, बिल्कुल हर तरफ ये इसी तरह से छाया हुआ है। और दैनिक भास्कर ने हालांकि इस खबर को अलग तरह से पेश किया है, इसमें उन्होंने एक तरफ सुषमा का बयान लिया है और दूसरी तरफ राहुल गांधी का, जिसमें अखबार लिखता है राहुल मॉम से पूछे क्वात्रोच्ची को भगाने के लिए कितने पैसे मिले। वहीं दूसरा शीर्षक दिया है सुषमा जी जब मिली तो उनकी आंखें शर्म से झुक क्यों गई थी। और अन्य खबरों की बात
किसके सामने?
उनके सामने राहुल कहते हैं कि उन्होंने उनकी आंखों में आग डाल के एक सवाल पूछा तो सुषमा जी की आंखें झुक गई थी शर्म से जी। और अन्य खबरों की बात करें तो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में भारत को झटका मिलने की खबर है, इसमें अमेरिका, रूस और चीन ने सुधार वार्ता का विरोध किया है। वहीं गुड़गांव में एक फैक्ट्री में रोबोट की चपेट में आने से एक टेक्नीशियन की मौत की खबर भी है। वहीं चीन ने जो अपनी मुद्रा युआन को घटाया है उसे भी प्रमुखता से जगह दी गई है।
बहुत बहुत शुक्रिया अमल अखबारों की समीक्षा के लिए, और अब देखते हैं कि किन किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
गुरुवार को संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, एक तरफ जहां सरकार विपक्ष पर रोड़े अटकाने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी हर हाल में भाजपा को घेरने में लगी हुई है। ऐसे में सत्र के आखिरी दिन भी काफी हंगामा होने की उम्मीद है। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जारिफ गुरुवार को भारत पहुंचेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। यह यात्रा इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि परमाणु समझौते के बाद यह पहला मौका है जब ईरान का कोई बड़ा मंत्री भारत के दौरे पर आया है। ब्रसल्स में ग्रीस को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बेलआउट पैकेज देने के लिए चर्चा होगी। खबरों के अनुसार देर रात तक इस मुद्दे पर वोटिंग भी मुमकिन है। इसके बाद यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की एक बैठक भी होनी है जो ग्रीस के लिए वित्तीय उपाय सुझाएंगे। सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक होगी। इस बैठक से पहले परिषद ने सीरिया में हुए क्लोरीन गैस हमले की जांच के लिए एक पैनल गठित करने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया था। भारत श्रीलंका के बीच गोल में चल रहे पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। श्रीलंका की टीम पहली पारी में केवल 183 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। पहले दिन का मैच खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट खोकर 128 रन बना लिए थे। कप्तान विराट कोहली और शिखर धवन अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं। प्रो कबड्डी लीग में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच बंगाल वॉरियर्स और पुनेरी पल्टन के बीच बेंगलुरु में रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच बेंगलुरु बुल्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच बेंगलुरु में रात 9 बजे से शुरू होगा।
और अब बाजी शतरंज की। पुरानी दिल्ली के इलाके में क्रिकेट और टेनिस के दौर में भी शतरंज के बिसात का चस्का पूरा का पूरा बरकरार है। रविवार को पुराने शहर के कई इलाकों में जैसे दरीबा, चांदनी चौक और जामा मस्जिद में दुकानों और घरों के बाहर शतरंज की बिसातें बिछ जाती हैं और लोग बाजी में मसरूफ हो जाते हैं शतरंज के। चलते हैं उन इलाकों की सैर पर इंदु पांडे के साथ।
भैया कूचा सेठ की गली किधर पड़ेगी? भैया कूचा सेठ की गली के सामने गन्नत पे आगे जामा मस्जिद की तरफ है।
शाहजहां का बसाया चांदनी चौक का दरीबा कला जो आज भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए है। कभी अगर आप रविवार के दिन इस गली में जाएं तो बंद दुकानों के सामने पटरी वाले अपना सामान बेचते नजर आएंगे। 2-4 लोग अपनी दूसरी दुनिया में खोए हुए हैं। सौरंज लिए हुए जहाँ पे यही कहा जा सकता है कि लाजवाब है जिंदगी तेरे ख्याल पे।
ऐसा है ये मुझे हो गए 40 साल खेलते हुए यहाँ पे। यहाँ दूर दूर से स्टेट लेवल के प्लेयर्स बहुत आके खेलते हैं।
और यहाँ खेलने वाले 70 साल के बुजुर्ग से लेकर के कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट भी है।
मेरा नाम सागर शर्मा है।
अभिषेक कुमार। हम जी छोटे छोटे आते थे जब यहाँ पे खेला करते थे, हमारे बड़े भी खेलते थे तो हम भी जब से देखते आ रहे हैं तो आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। संडे
एक बाजी कब तक चलती है?
तकरीबन आधा घंटा पौन घंटा चल जाती है।
शतरंज की जो हमारी जो बाजी है ये एक गणित है, जैसे मैथ का सवाल होता है 5 मिनट में भी समझ आ जाए, वरना एक एक दिन 2-2 दिन भी लगते हैं। तो ये चाल जब फंस जाती है बहुत घंटे लग जाते हैं।
शतरंज का मतलब क्या है?
शतरंज का हमारा मतलब ये शत माने 100, जो संस्कृत में शत है 100, और रंज माने उर्दू का शब्द है जो है गम, जो 100 गम देता हो वो शतरंज है। हम ये चाल चल देते तो ये जीत जाते, तो ये 100 गम देती है।
दरीबा कला के इन खिलाड़ियों से मिलने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े और पहुँचे जामा मस्जिद के मीना बाजार के पास, जहाँ पे एक लंबी स्ट्रीट लाइट के नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और एक वहाँ पे छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा था आजाद चेस क्लब 1932, जहाँ पे 3-3 शतरंज की बिसातें बिछी हुई थी।
मेरा नाम अनिल शिवप्रिय है और मैं बचपन से यहाँ खेलता आ रहा हूँ। मैं इंटरनेशनल फेडरेटेड चेस प्लेयर हूँ और रेटेड प्लेयर हूँ। अभी फिलहाल रेटिंग माइनस हो गई है मेरी।
ये भाइयों की शतरंज है, ये शकुनी की शतरंज नहीं है कि पासा बढ़ जाए मामा श्री 6, वो 6 नहीं लगेगा। यहाँ पे हमारे आपस के प्यार ही है जो गले मिलके शतरंज खेली जाती है,
सारा भाईचारा और बढ़ता है उल्टा हमारा।
ये कंप्यूटर खेल रहा है मैच चल रहा ना।
अच्छा, कंप्यूटर के साथ आप खेलते हैं?
देखिए ये अपनी चालू लगा कंप्यूटर।
विश्वनाथ आनंद जो है दूसरा पैदा हो सकता है अगर कोई सपोर्ट मिले यहाँ पर। तो
जो लोग शतरंज खेल रहे थे उनका कहना है कि कोई भी कभी भी इस जगह पे आकर के बिल्कुल फ्री में शतरंज की बाजियां सीख सकता है और खेल भी सकता है हमारे साथ।
जो दिल्ली चैंपियन भी बन चुके हैं बहुत पहले, जो एक मेन चीज है वो ये है कि अपनी प्रैक्टिस इसी जगह दरी पे आकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। हमने आज भी इस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ा है, आपके सामने बैठे हुए हैं। ये भारत का तो नहीं कह सकता, दिल्ली का सबसे पुराना चेस क्लब है।
जब हमने बिल्कुल नए नए एक मेंबर से पूछा कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगता है।
नहीं, यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, खेल के और काफी कुछ सीनियर हमसे सीखने को मिलता है इनसे।
तो क्या इस क्लब में शामिल होने के लिए कोई मेंबरशिप फीस देनी होती है?
इसकी कोई मेंबरशिप नहीं है। पहले ऐसा हम आपस में मिलके किसी ने 100 दे दिए, किसी ने 50 रुपए दे दिए, किसी ने 20 दे दिए।
दिल्ली चेस एसोसिएशन जो कि एफिलिएटेड है टू ऑल इंडिया चेस फेडरेशन से, यहाँ की सेक्रेटरी ए के वर्मा जी से जब हमने इस चेस क्लब के बारे में पूछा तब उन्होंने ये कहा,
ऐसा कोई रजिस्टर्ड तो नहीं है बट लोग खेलते हैं।
कब से खेल रहे हैं?
वो बहुत पहले से, बहुत पहले से। वो लोग सही बोल रहे हैं कि 1932 से खेल रहे हैं।
और इस तरह से ये शतरंज का खेल देखते हुए हम चांदनी चौक से बाहर आ गए और एक बार फिर से यही सोचा कि लाजवाब है जिंदगी तेरे ख्याल पे, 100 दर्द हैं, 100 हमदर्द भी, 100 सवाल भी और 100 रंज भी, साथ में शतरंज भी। इंदु पांडे, बीबीसी दिल्ली।
सदियों से गूंजती आवाजें,
ओम नमो भगवते ऋग्वेदाय नमः।
ऐसे लोग जिन्होंने गढ़ा हमारा मन, जो आज भी धड़कते हैं हमारी संवेदना में,
कहें कबीर सुनो भाई साधो,
जिनके बिना भारत ऐसा भारत ना होता।
मैं तो हूँ
प्रोफेसर सुनील खिलनानी के साथ उस अतीत की यात्रा जो बीता नहीं बल्कि हम में जीता है। भारतीयता के अमर शिल्पियों पर बीबीसी की स्पेशल सीरीज फैला उजियारा, पहला प्रसारण रविवार को दिनभर में और पुनः प्रसारण मंगलवार विश्व भारती में।
और अब सुनते हैं खेल की खबरें।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। खेल की खबरों में सबसे पहले बात भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज की। गोल्ड टेस्ट के दूसरे दिन आज जब भारतीय टीम अपनी पारी आगे बढ़ाने उतरेगी तो उसकी कोशिश श्रीलंकाई पारी के बचे हुए 55 रन को जल्द हासिल कर एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की होगी। अपने फिरकी गेंदबाज आर अश्विन के 6 विकेट के दम पर भारत ने श्रीलंका को पहले ही दिन 183 रन पर समेट दिया था। इसके अलावा दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 128 रन भी जोड़ लिए थे। 53 रन बनाकर नाबाद रहने वाले शिखर धवन और 45 रन बनाकर खेल रहे कप्तान विराट कोहली आज भारतीय पारी को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन,
कोई स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल क्रिकेट खेलते रहे, आप छोटी छोटी बातें उन पे अगर गौर करेंगे तो बड़ी बातें अपने आप सही हो जाएंगी। आप अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आप सेशन टू सेशन जो कहा जाता है टेस्ट मैच में वो खेलें, और विराट कोहली अब सेट हो चुके हैं, शिखर धवन सेट हैं, तो जिस अपॉर्चुनिटी को अगर आप पहला घंटा संभाल लें तो आप बड़े रन बना सकते हो।
चलते हैं बैडमिंटन की तरफ। जकार्ता में खेली जा रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा और पुरुषों के सिंगल्स मुकाबलों में के श्रीकांत और HS प्रणॉय ने तीसरे दौर में कदम रख दिया है। ज्वाला अश्विनी की भारतीय जोड़ी ने दूसरे दौर में चीनी ताइपे जोड़ी शीपे चेन और वू तिन को 21-10, 21-18 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल्स में अब इस जोड़ी का सामना जापान की रीका काकीवा और म्यूका मेडा की जोड़ी से होगा। वहीं श्रीकांत ने दूसरे दौर में चीनी ताइपे के सुजे आओ को 21-14, 21-15 से हराया। उनका मुकाबला अगले दौर में हांगकांग के हु यून से होगा। हालांकि एक और भारतीय खिलाड़ी पी कश्यप कड़े संघर्ष के बावजूद दूसरे दौर में हार गए। 1 घंटे 5 मिनट तक चले मुकाबले में उन्हें हांगकांग के गुएन टिन मिन ने हराया। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और एक बार फिर से सुने विश्व समाचार अमल चौधरी से।
बीबीसी समाचार। खबरों के मुताबिक चीन के उत्तरी शहर तियानजिन में 2 बड़े धमाके हुए हैं जिसमें 17 लोगों के मारे जाने की खबर है और करीब 400 लोग घायल हुए हैं। दक्षिण कोरिया की सरकार का कहना है कि वो उत्तर कोरिया के उप प्रधानमंत्री चो योंग गोन की हत्या पर आ रही खबरों पर नजर रखे हुए है। खबरों के अनुसार गोन की हत्या उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के आदेश पर मई में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने मध्य अफ्रीकी गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के प्रमुख बाबकर गाय को बर्खास्त कर दिया है। मून ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और शोषण की खबरों से गुस्से में हैं। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के सैनिकों पर राजधानी बांगुई में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने और एक लड़के समेत उसके पिता की हत्या का आरोप लगाया है। चीन के सेंट्रल बैंक ने एक बार फिर से अपनी राष्ट्रीय मुद्रा युआन का मूल 1% घटा दिया है। बीबीसी समाचार।
कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला था राजेश चौहान ने। विश्व भारती में आपसे फिर थोड़ी देर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए फैसल मोहम्मद अली और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।